ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे हैं और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे हैं। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सद ग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती, तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए, तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाईस्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी, हाईस्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति होगी। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए, पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, अमंगल रूपी शरीर में ही अहमपन फुरता है, सो दुख का कारण है। यह संसार में स्थित होकर नाना प्रकार के शब्द करता है, जैसे कोठरी में बैठा हुआ बिलाव नाना प्रकार के शब्द करता है, वैसे ही अहंकार रूपी बिलाव देह में बैठा हुआ अहम अहम करता है, चुप कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर, जो किसी के निमित्त शब्द हो वही सुंदर है, अन्यथा सब शब्द व्यर्थ हैं। जैसे जय के निमित्त ढोल का शब्द सुंदर होता है, वैसे ही अहंकार से रहित जो पद है वही शोभनीय है और सब व्यर्थ हैं। शरीर रूपी नौका भोग रूपी रेत में पड़ी है, इसलिए इसका पार होना कठिन है। जब वैराग्य रूपी जल बढ़े और प्रवाह हो और अभ्यास रूपी पतवार का बल लगे, तब संसार के पार रूपी किनारे पर पहुँचते हैं। शरीर रूपी बेड़ा है जो संसार रूपी समुद्र और तृष्णा रूपी जल में पड़ा है, जिसका बड़ा प्रवाह है और भोग रूपी उसमें मगर हैं, सो शरीर रूपी बेड़े को पार नहीं लगने देते। जब शरीर रूपी बेड़े को वैराग्य रूपी वायु और अभ्यास रूपी पतवार का बल लगे, तब शरीर रूपी बेड़ा पार हो।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 10वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, परब्रह्म सम शांत स्वच्छ अनंत चिन्मात्र और सर्वदा काल अपने आप में स्थित है। उसमें सम असम रूप जगत उत्पन्न हुआ है। सम अर्थात सजातीय रूप और असम अर्थात भेद रूप कैसे हुए सो भी सुनिए। प्रथम तो उसमें चैत्य का फुरना हुआ है, उसका नाम जीभ हुआ और उसने दृश्य को चेता, उससे तन मात्र शब्द स्पर्श रूप रस और गंध उपजे, उन्हीं से पृथ्वी अप तेज वायु और आकाश पंचभूत रूपी वृक्ष हुआ और उस वृक्ष में ब्रह्मांड रूपी फल लगा। इससे जगत का कारण पंच तन्मात्रा हुई है और तन्मात्रा का बीज आदि संबित आकाश है और इसी से सर्व जगत ब्रह्म रूप हुआ। हे राम जी, जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। इसका बीज पर ब्रह्म है तो यह भी पर ब्रह्म हुआ। जो आदि अचेत चिन्मात्र स्वरूप परमाकाश है और जिस चैतन्य संबित में जगत भासता है वह जीवाकाश है, वह भी शुद्ध निर्मल है क्योंकि वह पृथ्वी आदि भूतों से रहित है। हे राम जी, यह जगत जो तुमको भासता है सो सब चिदाकाश रूप है और वास्तव में द्वैत कुछ नहीं बना। यह मैंने तुमसे ब्रह्माकाश और जीवाकाश कहा। अब जिससे इसको शरीर ग्रहण हुआ सो सुनिए। हे राम जी, शुद्ध चिन्मात्र में जो चैतन्य उन्मुखत्व अहम अस्मि हुआ और उस अहम भाव से आपको जीव अणु जानने लगा, अपना वास्तव स्वरूप अन्य भाव की नाई होकर जीव अणु में जो अहम भाव दृढ़ हुआ उसी का नाम अहंकार हुआ। उस अहंकार की दृढ़ता से निश्चयात्मक बुद्धि हुई और उसमें संकल्प रूपी मन हुआ। जब मन इसकी ओर संसरने लगा तब सुनने की इच्छा की, इससे श्रवण इंद्रियां प्रकट हुई। जब रूप देखने की इच्छा की तब चक्षु इंद्रियां प्रकट हुई। जब स्पर्श की इच्छा की तो त्वचा इंद्रियां प्रकट हुई और जब रस लेने की इच्छा की तो जीभा इंद्रियां प्रकट हुई। इसी प्रकार से देह इंद्रियां चैत्यता से भासी और उसमें यह जीव अहम प्रतीति करने लगा। हे राम जी, जैसे दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब होता है, वह पर्वत से बाह्य है, वैसे ही देह और इंद्रियां बाह्य दृश्य हैं, पर अपने में भासी है। इससे उसमें अहम प्रतीति होती है। जैसे कूप में मनुष्य आपको देखे वैसे ही देह में आपको देखता है। जैसे डब्बे में रत्न होता है वैसे ही देह में आपको देखता है। वही चिद अणु देह के साथ मिलकर दृश्य को रचता है। उस अहम से ही क्रिया भासने लगी। जैसे स्वप्न में दौड़े और जैसे स्थित में स्पंद होती है वैसे ही आत्मा में जो स्पंद क्रिया हुई वह चित्त संबित से हुई है और उसी का नाम स्वयंभू ब्रह्मा हुआ। जैसे संकल्प से दूसरा चंद्रमा भासता है वैसे ही मनोपम जगत भासता है। जैसे शश के श्रृंग होते हैं वैसे ही यह जगत है। कुछ उपजा नहीं, केवल चित्त के स्पंद में जगत फूरता है। जैसे जैसे चित्त फुरता गया वैसे वैसे देश काल द्रव्य स्थावर जंगम जगत की मर्यादा हुई। इससे सब जगत संकल्प रूप है। संकल्प से इतर जगत का आकार कुछ नहीं। संकल्प फुरता है तब आगे जगत दृश्य वासता है, और संकल्प निष्पंद होता है तब दृश्य का अभाव होता है। हे राम जी, इस प्रकार से यह ब्रह्मा निर्वाण हो फिर और उपजते हैं। इससे सब संकल्प मात्र ही है। जैसे नटवा नाना प्रकार के पट के सवांग करके बाहर निकल आता है, वैसे ही देखो यह सब माया मात्र है। हे राम जी, जब चित्त की ओर संसरता है तब दृश्य का अंत नहीं आता, और जब अंतर्मुख होता है तब जगत आत्मरूप होता है। चित्त के निष्पंद होने से एक क्षण में जगत निवृत्त होता है, क्योंकि संकल्प रूप ही है। इससे यह जगत आकाश रूप है, उपजा कुछ नहीं, और आत्मसत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में पर्वत और नदियां भ्रम से दिखते हैं, वैसे ही यह जगत भी भ्रम से भासता है। जैसे स्वप्न में आपको मुआ देखता है सो भ्रम मात्र है, वैसे ही यह जगत भ्रम मात्र है। हे राम जी, यह स्थावर जंगम जगत सब चिदाकाश है। हमको तो सदा चिदाकाश ही भासता है। आदि विराट रूप में ब्रह्मा भी वास्तव में कुछ उपजे नहीं, तो जगत कैसे उपजा? जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के देश काल और व्यवहार दृष्टि आते हैं सो अकारण रूप है, उपजे कुछ नहीं और आभास मात्र है, वैसे ही यह जगत आभास मात्र है। कार्य कारण भासते हैं तो भी अकारण है। हे राम जी, हमको जगत ऐसा भासता है जैसे स्वप्न से जागे मनुष्यों को भासता है। जो वस्तु अकारण भासी है सो भ्रांति मात्र है। जो किसी कारण द्वारा जगत नहीं उपजा तो स्वप्नबत है। जैसे संकल्पपुर और गंधर्व नगर भासते हैं, वैसे ही यह जगत भी जानो। आदि विराट आत्मा अंतवाहक रूप है, और वह पृथ्वी आदि तत्वों से रहित आकाश रूप है। तो यह जगत आदि भौतिक कैसे हो? सब आकाश रूप है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह दृश्य मिथ्या रूप असत रूप है। जो है सो निराम्य ब्रह्म है। यह ब्रह्मा आकाश ही जीव की नाई हुआ है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप होता है, वैसे ही ब्रह्म जीव रूप होता है। आदि संबित स्पंद रूप ब्रह्मा हुआ है, और उस ब्रह्मा से आगे जीव हुए हैं। जैसे एक दीपक से बहुत दीपक होते हैं और जैसे एक संकल्प से बहुत संकल्प होते हैं, वैसे ही एक आदि जीव से बहुत जीव हुए हैं। जैसे थंबे में शिल्पी पुतलियां कल्पता है, पर वह पुतलियां शिल्पी के मन में होती है। थंबा ज्यों का त्यों ही स्थित है। वैसे ही सब पदार्थ आत्मा में मन कल्पे हैं। वास्तव में आत्मा ज्यों का त्यों ब्रह्म है। उन पुतलियों में बड़ी पुतली ब्रह्म है और छोटी पुतली जीव है। जैसे वास्तव में थंबा है, पुतली कोई नहीं उपजी, वैसे ही वास्तव में आत्मसत्ता है, जगत कुछ उपजा नहीं, संकल्प से भासता है और संकल्प के मिटने से जगत कल्पना मिट जाती है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, एक जीव से जो बहुत जीव हुए हैं तो क्या वे पर्वत में पाषाण की नाई उपजते हैं या कोई जीवों की खानी है? जिससे इस प्रकार इतने जीव उत्पन्न हो आते हैं, अथवा मेघ की बूंदों या अग्नि से भी स्फुलिंगों की नाई उपजते हैं, सो कृपा करके कहिए। और एक जीव कौन है जिससे संपूर्ण जीव उपजते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ना एक जीव है और ना अनेक है। तेरे ये वचन ऐसे हैं जैसे कोई कहे कि मैंने शश के श्रृंग उड़ते देखे हैं। एक जीव तो नहीं उपजा, मैं अनेक कैसे कहूं? शुद्ध और अद्वैत आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, वह अनंत आत्मा है, उसमें भेद की कोई कल्पना नहीं है। हे राम जी, जो कुछ जगत तुमको भासता है सो सब आकाश रूप है, कोई पदार्थ उपजा नहीं, केवल संकल्प के फूरने से ही जगत भासता है। जीव शब्द और उसका अर्थ आत्मा में कोई नहीं उपजा, यह कल्पना भ्रम से भासती है। आत्मसत्ता ही जगत की नाई भासती है, उसमें ना एक जीव है और ना अनेक जीव है। हे राम जी, आदि विराट आत्मा आकाश रूप है, उससे जगत उपजा है। मैं तुमको क्या कहूं, जगत विराट रूप है, विराट जीव रूप है और जीव आकाश रूप है, फिर और जगत क्या रहा और जीव क्या हुआ? सब चिदाकाश रूप है। ये जितने जीव भासते हैं वे सब ब्रह्म स्वरूप है, द्वैत कुछ नहीं और ना इसमें कुछ भेद है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप कहते हैं कि आदि जीव कोई नहीं, तो इन जीवों का पालने वाला कौन है? वह नियामक कौन है जिसकी आज्ञा में ये विचरते हैं? जो कोई हुआ ही नहीं तो ये सर्वज्ञ और अल्पज्ञ क्यों होते हैं और एक में कैसे हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसको तुम आदि जीव कहते हो वह ब्रह्म रूप है, वह नित्य शुद्ध और अनंत शक्तिमान अपने आप में स्थित है, उसमें जगत कल्पना कोई नहीं। हे राम जी, जो शुद्ध चिदाकाश अनंत शक्ति में आदि चित्त किंचन हुआ है, वही शुद्ध चिदाकाश ब्रह्म सत्ता जीव की नाई भासने लगी है। स्पंद द्वारा हुए की नाई भासती है, पर अपने स्वरूप से इतर कुछ हुआ नहीं। चैतन्य संबित आदि स्पंद से विराट ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुआ है और उसने संकल्प करके जगत रचा है। उसी ने शुभ अशुभ कर्म रचे हैं और उसी ने नीति रची है, अर्थात यह शुभ है और यह अशुभ है। वही आदि नीति महाप्रलय पर्यंत ज्यों की त्यों चली जाती है। हे राम जी, यह अनंत शक्तिमान देव जिससे आदि फुरना हुआ है वैसे ही स्थित है। जो शक्ति, जो आदि शक्ति फुरी है वह वैसे ही है जो अल्पज्ञ फुरा है, सो अल्पज्ञ ही है। हे राम जी, संसार के पदार्थों में नीति शक्ति प्रदान है, उसके लांघने को कोई भी समर्थ नहीं है। जैसे रचा है वैसे ही महाप्रलय पर्यंत रहती है। हे राम जी, आदि नित्य विराट पुरुष अंतवाहक रूप पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है और यह जगत भी अंतवाहक रूप पृथ्वी आदि तत्वों से नहीं उपजा, सब संकल्प रूप है। जैसे मनोराज का नगर शून्य होता है वैसे ही यह जगत शून्य है। हे राम जी, इस सर्ग का निमित्त कारण और समवाय कारण कोई नहीं। जो पदार्थ निमित्त कारण और समवाय कारण बिना दृष्टि आवे उसे ब्रह्म मात्र जानिए, वह उपजता नहीं। जो पदार्थ उपजता है वह इन्हीं दोनों कारणों से उपजा है, पर वह जगत का कारण इनमें से कोई नहीं। ब्रह्म सत्ता नित्य शुद्ध और अद्वैत सत्ता है, इसमें कार्य कारण की कल्पना कैसे हो। हे राम जी, यह जगत अकारण है, केवल भ्रांति से भासता है। जब तुमको आत्म विचार उपजेगा तब दृश्य ब्रह्म मिट जावेगा। जैसे दीपक हाथ में लेकर अंधकार को देखिए तो कुछ दृष्टि नहीं आता, वैसे ही जो विचार करके देखोगे तो जगत ब्रह्म मिट जावेगा। जगत ब्रह्म मन के फूरने से ही उदय हुआ है, इससे संकल्प मात्र है, इसका अधिष्ठान ब्रह्म है। सब नाम रूप उस ब्रह्म सत्ता में कल्पित है और षट विकार भी उसी ब्रह्म सत्ता में फुरे हैं, पर सबसे रहित और शुद्ध चिदाकाश रूप है और जगत भी वह रूप है। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग बुदबुदे और फेन भासते हैं, वैसे ही आत्मसत्ता में चित्त के फुरने से जगत भासता है। जैसे आदि चित्त में पदार्थ सत्ता दृढ़ हुई है, वैसे ही स्थित है और आत्मा के साथ अभेद है, इतर कुछ नहीं, सब चिदाकाश है। इच्छा, देवता, समुद्र, पर्वत, ये सब आकाश रूप हैं। हे राम जी, हमको सदा चिदाकाश रूप ही भासता है और आत्म सत्ता ही मन, बुद्धि, पर्वत, कंदरा सब जगत होकर भासती है। जब चैतन्य मुखत्व होती है, सब जगत भासता है। जैसे वायु स्पंद रूप होती है तो भासती है और निस्पंद रूप होती है तो नहीं भासती, वैसे ही चित्त संवेदन स्पंद रूप होता है तो जगत भासता है, और जब चित्त संवेदन स्फुरण रूप होता है तो जगत कल्पना मिट जाती है। चिन्ह मात्र में जो चैत्य भाव हुआ है, इसी का नाम जगत है। जब चैत्य से रहित हुआ तो जगत मिट जाता है, जब जगत ही ना रहा तो भेद कल्पना कहाँ रही। इससे ना कोई कार्य है, ना कारण है और ना जगत है, सब ब्रह्म मात्र कल्पना है। शुद्ध चिन्ह मात्र अपने आप में स्थित है। हे राम जी, शुद्ध चिन्ह मात्र में चित्त सदा किंचन रहता है। जैसे मिर्चों के बीच में तीक्ष्णता सदा रहती है, परंतु जब कोई खाता है तब तीक्ष्णता भासती है, अन्यथा नहीं भासती। वैसे ही जब चित्त संवेदन चैतन्य मुख होता है तब जीव को जगत भासता है और संवेदन से रहित जीव को जगत कल्पना नहीं भासती। हे राम जी, जब संवेदन के साथ परिच्छिन्न संकल्प मिलता है तब जीव होता है और जब इससे रहित होता है तो शुद्ध चिदात्मा ब्रह्म होता है। जिस पुरुष की सब कल्पना मिट गई है और जिसको शुद्ध निर्विकार ब्रह्म सत्ता का साक्षात्कार हुआ है, वह पुरुष संसार भ्रम से मुक्त हुआ है। हे राम जी, यह सब जगत आत्मा का आभास रूप है। वह आत्मा अच्छेद्य, अदाय, अक्लेद्य, नित्य, शुद्ध, सर्वगत स्थानु की नाई अचल है। अतः जगत चिदाकाश रूप है। हमको तो सदा ऐसे ही भासता है, पर अज्ञानी वाद विवाद क्या करते हैं। हमको वाद विवाद कोई नहीं, क्योंकि हमारा सब भ्रम नष्ट हो गया है। हे राम जी, यह सब जगत ब्रह्म रूप है और द्वैत कुछ नहीं। जिसको यह निश्चय हो गया है, उसको सब अंग अपना स्वरूप ही है, तो निराकार और निर्वपु सत्ता के अंग अपना स्वरूप क्यों ना हो। यह सब प्रपंच चिदाकाश रूप है, परंतु अज्ञानी को भिन्न भिन्न और जन्म मरण आदि विकार भासते हैं और ज्ञानवान को सब आत्म रूप ही भासते हैं। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश सब आत्मा के आश्रय फूरते हैं। और चित्त शक्ति ही ऐसे होकर भासती है। जैसे वसंत ऋतु आती है तो रसा शक्ति से वृक्ष और बेलें सब प्रफुल्लित होकर भासती हैं, वैसे ही चित्त शक्ति की स्पंदता ही जगत रूप होकर भासती है। हे राम जी, जैसे वायु स्पंदता से भासती है वैसे ही जगत फूरने से भासता है, वैसे ही चित्त संवित जगत रूप होकर भासता है। फूरने से ही जगत है और कोई वस्तु नहीं। हरि ओम, ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।